हरे कृष्णा। तो आप जानते हैं कि बहुत शुभ पवित्र समय चल रहा है। क्या चल रहा है? पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कब से शुरू हुआ था? 17 जून से शुरू हुआ था और चलेगा कब तक? 16 जुलाई तक। आज कितना है? 6। तो 10 दिन का समय और है। बहुत पवित्र समय है। तो हमने पिछली बार इस के महात्म्य के 6 अध्याय सुने थे, लेकिन यहाँ मैंने 6 अध्याय सुनाए थे, फिर इसके आगे के अध्याय किसी दूसरे मंदिर में सुनाए, फिर और अलग अलग मंदिरों में मैं आगे आगे की कथा सुनाता रहा। तो अभी तक मैंने 19 अध्याय सुना दिए और 20वां अध्याय चल रहा है। तो 19 अध्याय की कथा में संक्षेप में सुना करके फिर 20वें अध्याय से मैं पढ़ूंगा जहां पर मैंने छोड़ा हुआ है। समय नहीं बचेगा। आने संक्षेप में सुना रहा हूं। पिछली बार जब मैं था तो कितने लोग थे जो 6 अध्याय मैंने सुनाए थे? आधे लोग ही थे, आधे लोग नहीं थे। तो मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। इसका जो महात्म है ये शुरू होता है उस घटना से जब सृष्टि काल में सबसे पहली बार ये महीना आया। समझ रहे? सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले महीना आया है ना। हर 3rd साल में ये महीना आता है। तो पहली बार जब आया महीना तो इसका स्वागत नहीं हुआ। इसका क्या हुआ? तिरस्कार हुआ। जितने महीने हैं सबने तिरस्कार किया इसका कि ये शुभ नहीं है, ये अशुभ महीना है, ये मल मास है, इसमें कोई संक्रांति नहीं है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं किया जा सकता है, इसका कोई स्वामी नहीं है। जितने भी महीने हैं, जितने भी संवत्सर हैं, देवता हैं, तीर्थ हैं, सब ने निंदा की। और इतनी निंदा की कि इसने क्या सोचा कि मैं अपने प्राण छोड़ दूं। तो कुछ मनुष्यों ने सुझाव दिया कि तुम वैकुंठ में जाओ, वैकुंठ में भगवान विष्णु है, वो तुम्हारा जो है दुख दूर करेंगे। तो वैकुंठ में जाकर के बहुत रोया और भगवान बोले कि यहाँ तो कोई रोता नहीं, यहाँ तो कोई कष्ट नहीं होता, तुम्हें किस बात का कष्ट है यहाँ? तो उसने बताया कि मेरा कष्ट ऐसा है। तो भगवान विष्णु बोले कि देखो, तुम्हारा जो कष्ट है इसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाँ एक उपाय है, मैं तुमको गोलोक धाम ले जाता हूँ अपने साथ। तो मेरे साथ चलो गोलोक धाम में, भगवान कृष्ण तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। तो विष्णु जी इसका हाथ पकड़ करके वैकुंठ से कहाँ ले जाते हैं? गोलोक में ले जाते हैं। और गोलोक में भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं और वहाँ भी ये बहुत व्याकुल हो रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ गोलोक में तो कोई कष्ट नहीं किसी को होता, इससे किस बात का कष्ट है? तो विष्णु जी ने सब कष्ट बताया। तो भगवान कृष्ण बोले विष्णु जी से कि आपने बहुत अच्छा किया इसको यहाँ ले आए, इससे आपकी बहुत कीर्ति फैलेगी और अब जो है मैं अपना जितना गुण है सब इसको देता हूँ। मेरा जितना भी ऐश्वर्य है, कीर्ति है, शक्ति है और भक्त वत्सलता, दया, जितने गुण है सब मैं इसको देता हूँ और मैं अपना नाम भी देता हूँ इसको। क्या नाम? पुरुषोत्तम है ना। तो भगवान ने मतलब जब ऐसी कृपा करी तो फिर विष्णु जी इसको लेकर के वैकुंठ में आए और ये बहुत हर्षित हो गया और बहुत सुखी हो गया और सब महीनों में, सब तीर्थों में, सब देवताओं में इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया है ना। तो ये घटना नारायण ऋषि सुनाते हैं बद्रिकाश्रम में। किसको? नारद जी को सुनाते हैं है ना। और यही कथा सुनाते हैं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को है ना। तो भगवान कृष्ण ने भी ये घटना सुनाई थी 5 पांडवों को और द्रौपदी, 5 पांडवों द्रौपदी को भी ये घटना सुनाई थी भगवान कृष्ण ने। तो फिर भगवान कृष्ण फिर एक बात और भी बताते हैं कि पांडवों को कहते हैं और द्रौपदी को कहते हैं कि तुम लोगों ने जो है इसका कोई सम्मान नहीं किया अभी तक, जितने बार भी ये निकल चुका है तुम्हारे जीवन काल में और वनवास काल में, तुम्हारे वनवास के 12 साल भी गए हैं, बीतने वाले हैं, तो तुमने इसका कोई सम्मान नहीं किया है। और द्रौपदी को जो कष्ट मिला है इसका भी कारण मैं बताता हूँ। तो भगवान बताते हैं द्रौपदी के कष्ट का कारण कि द्रौपदी को विशेष जो अपमानित होना पड़ा है ना, पांच पांडवों को तो जो है हुआ ही जो भी कष्ट मिला, लेकिन द्रौपदी को विशेष कष्ट मिला है ना, द्रौपदी का विशेष अपमान हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका भी कारण मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो द्रौपदी पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या थी और बचपन में इसकी माता का देहांत हो गया था, तो पिता की एकमात्र संतान होने के कारण पिता का बहुत प्यार मिला और इसके अंदर इतने गुण थे, इतनी सुंदरता थी कि पूरे विश्व में अद्वितीय, कोई मतलब ऐसी कन्या नहीं जितना इसका सौंदर्य और जितने गुण इसके थे। और पिता से कभी इसको कभी डांट फटकार नहीं मिली और इसके गुण बढ़ते गए और सुंदरता बढ़ती गई और इसने बहुत सी विद्याओं को भी सीख लिया, संगीत कला, नृत्य कला, गान कला सब कुछ सीख लिया और पिता की और चिंता बढ़ गई। कन्या में इतने गुण हो तो पिता की चिंता और बढ़ जाती, पिता प्रसन्न होने की जगह क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। क्यों चिंता होती है कि अब इसके समान वर कैसे मिलेगा, तो पिता की चिंता बढ़ गई और कोई वर नहीं था इसके समान, योग्य कोई वर नहीं मिला। तो मेधावी मुनि जो है इसी चिंता में उन्होंने शरीर छोड़ दिया और इसका जो है कष्ट अब मतलब शुरू हो गया, कष्ट ही कष्ट अब शुरू हो गया। तो ऐसे कष्ट में जो मेधावी मुनि के मित्र हैं दुर्वासा मुनि कैलाश पर्वत पर रहते थे, तो उन्होंने जब सुना कि मेधावी मुनि का देहांत हो गया है और उनकी जो पुत्री है वो बहुत कष्ट में पड़ी हुई है, तो वो कैलाश पर्वत से इसको देखने के लिए आए, इसके आश्रम पे आए। तो इसने उनका जो है सत्कार किया, आसन दिया, तो दुर्वासा मुनि ने देखा कि बहुत ही अच्छे लक्षण हैं इसके कन्या के, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, तुम्हारे बहुत अच्छे गुण हैं। तो ये बोली कि आप जो है मुझे जैसा आशीर्वाद दे रहे हैं वैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरा तो जीवन बिल्कुल अंधकार में है क्योंकि मेरे ना तो पिता है, ना कोई पति है, ना कोई पुत्र है, कोई मेरा संरक्षक नहीं है, है ना। तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए कि मुझे कैसे सौभाग्य प्राप्त हो। तो दुर्वासा मुनि बोले कि देखो एक गुप्त रहस्य मैं बताता हूँ जो सब लोग नहीं जानते हैं, 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है, इस महीने में तुम व्रत स्नान करो, उपवास करो, तो जो है तुम्हारा सब प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि इस कन्या ने दुर्वासा मुनि से उल्टी बहस की, अज्ञान के कारण उल्टी बहस की कि आप मुझे गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये तो महीनों में सबसे अशुद्ध महीना है, और जो दूसरे महीने हैं उनको छोड़ करके आप इस महीने की पूजा क्यों बताते हैं, क्या बैसाख में जो है कामना पूर्ति नहीं होती है, या और माघ का महीना है ये बहुत पवित्र है, और जो देवता हैं इनकी पूजा आप नहीं बता रहे हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये भी तो सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, आप जो है गलत शिक्षा दे रहे हैं। और दुर्वासा मुनि ने पहली बार किसी को श्राप नहीं दिया, तो ये पहली घटना है कि दुर्वासा मुनि ने श्राप नहीं दिया। दुर्वासा मुनि ने सोचा कि ये मेरा श्राप सहन नहीं कर पाएगी, पहले से ही दुखी है ना। तो दुर्वासा मुनि बोले कि मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारी जो इच्छा है सो करो, लेकिन तुम्हें दंड जरूर मिलेगा क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की है, इसका इस जीवन में अगले जीवन में तुम्हें कभी दंड तो जरूर ही मिलेगा। दुर्वासा मुनि चले गए और इसका मुख उसी समय मलिन हो गया, पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के कारण इसका चेहरा मलिन हो गया। और अब इसने विचार किया कि मैं सौभाग्य प्राप्त करने के लिए क्या करूं, तो सोचा कि शिव जी की आराधना करूं। तो शिव जी की आराधना में बड़ी कठोर तपस्या की और 9,000 साल तक तपस्या की। कितना तपस्या की? 9,000 साल तक तपस्या की। देखिए पुरुषोत्तम मास का एक महीने का ही केवल कुछ करना था नियम, 9,000 साल तक तपस्या की। तो शिव जी आए, प्रसन्न भी हुए लेकिन प्रसन्न नहीं भी हुए क्योंकि इसने जो निंदा की थी पुरुषोत्तम अधिक मास की उसका आक्रोश उनके अंदर बना हुआ था। तो बोले ठीक है, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो उसने जो है बार बार 5 बार कहा कि मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि तुमने 5 बार मुझसे पति मांगा है, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे और ये पति तुम्हारे जो है बहुत गुणवान होंगे और बहुत प्रसिद्ध होंगे और अपने इंद्रियों को बस में रखने वाले होंगे, शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, सदाचारी होंगे, शूरवीर होंगे, सब गुण होंगे। लेकिन ये बड़ी दुखी हो गई, बोले कि ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि पांच पति हों, किसी पुरुष के पांच स्त्रियां हों तो कोई निंदा की बात नहीं है, लेकिन किसी स्त्री के पांच पति हों ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, और मेरी लज्जा आपके लिए भी लज्जा है, तो आप जो है ऐसा मुझे वरदान क्यों दे रहे हैं। तो शिव जी ने फिर मतलब यही कहा कि तुमने जो है पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा की थी, इस कारण से तुम्हें अब मैंने जो कुछ भी दिया है वो वरदान समझो या शाप समझो, ये मैंने तुम्हें दे दिया, उस जीवन काल में तुम्हें कोई पति प्राप्त भी नहीं होगा। और शिव जी अंतर्धान हो गए, तो शिव जी की भी सहानुभूति और कृपा उसको नहीं मिली। इससे बड़ी शिक्षा मिलती है। शिव जी ने कहा कि तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की है तो ना मैं प्रसन्न हो सकता हूँ तुमसे, ना कोई देवता प्रसन्न हो सकते हैं, ना कोई तीर्थ, तुम्हें कहीं से कुछ भी सुख नहीं मिल सकता, तुमने ऐसा जो है व्यवहार किया है। और शिव जी ने फिर कुछ बात नहीं की और अंतर्धान हो गए, और वो भी बड़ी उदास हो गई और अपने आश्रम में रही, और समय आने के बाद उसका जो है शरीर छूट गया। तो तपस्या से बहुत पवित्र हो गई थी, तो अगले जन्म में राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से इसका जन्म हुआ, अयोनिजा कन्या के रूप में इसका जन्म हुआ, किसी स्त्री के गर्भ में इसका जन्म नहीं हुआ। द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और सब लोग जानते हैं फिर द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेधन करके इसको प्राप्त किया था, फिर पांच पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के कारण ही दुशासन ने इसके बाल पकड़ करके खींचे, भरी सभा में अपमानित किया, और मैंने भी इसकी रक्षा नहीं की, यद्यपि इस जीवन काल में ये मेरी अनन्य भक्ति थी। सोचिए, अनन्य भक्त, मेरे परायण और मेरी सखी, सब प्रकार से समर्पित, लेकिन तो भी मैंने इसकी रक्षा नहीं की। लेकिन फिर जब इसने मेरे नामों को पुकारा, तो नाम की भी महिमा है ऐसी कि मैंने रक्षा की इसकी। तो भगवान कृष्ण जो है ये बात बता करके और कहा कि अब आगे से आप लोग जो है पुरुषोत्तम अधिक मास का नियम पालन करना, तो इस बार जो है आप लोगों का सब कष्ट मैं दूर करूंगा, आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपको निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा और आगे से कोई फिर बाधा नहीं आएगी। तो पांडवों ने और द्रौपदी ने जो है भगवान कृष्ण को नमस्कार किया और कृष्ण जो है चले गए द्वारका, और इन्होंने जो है पांच पांडव द्रौपदी ने फिर पुरुषोत्तम मास का भी व्रत किया, और आगे चल करके सब कुछ आप लोग जानते हैं, महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और राज्य प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण जब द्रौपदी और पांच पांडवों को पुरुषोत्तम मास की महिमा बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक बात यही बताई कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था और उसके प्रभाव से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई, और फिर अगले जीवन में उनको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ और बहुत शक्तियां प्राप्त हुई। तो ये कह करके तो भगवान कृष्ण चले गए, लेकिन नारद मुनि जो है नारायण मुनि से पूछते हैं कि दृढ़धर्मा राजा कौन है, उन्होंने कैसे इस मास का आराधन किया था और उनको कैसी सुख संपत्तियां प्राप्त हुई, तो ये उनकी इच्छा है जानने की। तो नारायण ऋषि फिर ये कथा अपनी ओर से सुना रहे हैं राजा दृढ़धनवा की। तो उन्होंने बताया कि राजा दृढ़धनवा पिछले जन्म में नहीं अभी मैं बता रहा हूँ कि राजा दृढ़धनवा जो है एक राजा के पुत्र थे जिसका नाम था चित्रधर्मा। चित्रधर्मा है देश के राजा थे और प्रजापालक थे, बहुत अच्छे और सब प्रकार के गुण थे, शूरवीर थे वो। तो उनको पुत्र हुआ दृढ़धनवा नाम का। तो ये बालक जो है जब गुरुकुल में गया तो गुरु से एक बार में जो सुनता था तो सब उसको याद हो जाता था, जैसे पहले से ही इसको सब कुछ पता है, तो गुरु भी इससे बहुत प्रसन्न रहते थे और गुरु से सब शिक्षा प्राप्त करके ये फिर अपने राज्य में जब आया तो राजा चित्रधर्मा ने इसका बड़ा जो है सम्मान किया, और प्रजा भी बहुत चाहने लगी कि दृढ़धनवा अब राजा बने, और प्रजा भी जो है इनके राज्य का सुख पाना चाहती थी। तो राजा चित्रधर्मा ने सोचा कि तो अच्छा अवसर है कि मैं दृढ़धनवा को राज्य सौंप दूं और मैं केवल कृष्ण का भजन करूं और गोलोक धाम की प्राप्ति करूं। तो चित्रधर्मा ने जो है दृढ़धनवा को राज्य सौंप दिया और वो पुलह मुनि के आश्रम में गए और कृष्ण का भजन करते हुए उन्होंने गोलोक की प्राप्ति की। राजा द्विधर्मा को जब पता चला कि उनके पिता ने शरीर छोड़ दिया है तो उनको शोक भी हुआ, लेकिन इस बात का हर्ष हुआ कि गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है मेरे पिता को, तो अपने पिता का उन्होंने पारलौकिक कर्म किया। इस प्रकार से अब राज्य में जो है इनको सब प्रकार के सुख सुविधाएं, मंत्री है, सेना है और पत्नी भी गुण सुंदरी, पत्नी बहुत पतिव्रता है और समर्पित है। तो ये सब जो है चलते चलते काफी समय बीत गया। एक बार राजा द्विधर्मा को सोते हुए एक चिंता पैदा हुई और वो चिंता क्या थी कि मैंने इस जीवन काल में कोई व्रत नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया, लेकिन मुझे इतना सुख वैभव संपत्ति सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। इस चिंता में वो बड़े डूब गए। तो उस समय जो है रात्रि में ब्राह्मण मुहूर्त में ही वो उठ गए और घोड़े में चढ़ करके शिकार खेलने के लिए जंगल गए और एक हरण को उन्होंने बाण मारा तो हरण घायल हो गया, लेकिन वो भागा। तो उसके पीछे ये जब अपने घोड़ा को दौड़ाते हैं तो उसके खून की बूंदे का जो है चिन्ह देखते हुए वो हरण को खोजते हैं, लेकिन हरण किसी झाड़े में छिप गया, हरण नहीं मिला। और ये इनको बहुत प्यास लगी, थकान भी हुई, तो देखा एक बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें शुद्ध जल शीतल जल भरा हुआ है, तो जल पिया और थकान मिटाने के लिए एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गए। तो बट वृक्ष भी बहुत घनी छाया वाला था तो उसमें इनको जो है बड़ा विश्राम मिला और अकेले बैठे हुए ये जो है कुछ सोच रहे थे। उसी समय एक तोता दिखाई पड़ा इनको, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ केवल अकेला एक तोता आया है मेरे पास और कोई नहीं। और तोता एक श्लोक बोल रहा है इनको सुना करके और बार बार एक ही श्लोक बोल रहा है। तो इस श्लोक का अर्थ ये था कि आपको इतना अतुल सुख और संपत्ति प्राप्त हुई है लेकिन आप तत्व का विचार नहीं करते हैं तो इस भाव सागर को कैसे पार करेंगे। अब ये श्लोक तोता बार बार पढ़ता रहा तब तक इनकी सेना गई ढूंढते ढूंढते, तो तोता भी चला गया और अब इनकी चिंता जो है मतलब और ज़्यादा बढ़ गई। पहले भी चिंतित थे अब और चिंता हो गई कि तोते ने क्या बोला है, श्लोक समझ में आता नहीं है कि श्लोक का अर्थ क्या है। तो अब राज्य में आ गए अपने, लेकिन ना तो मंत्रियों से बात करते हैं, ना सेनापति से बात करते हैं और ना रानी से बात करते हैं, ना सेवकों से बात करते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं। तो अब तो बड़ी मतलब स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति हो गई। तो रानी ने जो है इनसे पूछा एकांत में कि आप क्यों ऐसे उदास रहते हैं, आप खाइए पिए और आप जो है बातें करिए, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। तो रानी से भी कुछ बात नहीं की, रानी भी बड़ी निराश हो गई। तो इनके महल में वाल्मीकि मुनि आए, वाल्मीकि मुनि बहुत प्रसिद्ध हैं, आदि कवि हैं, रामायण जो उनका आदि काव्य उसकी रचना करने वाले। तो वाल्मीकि मुनि आए तो वाल्मीकि मुनि को देख करके ये जो है बहुत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत सत्कार किया, आसन दिया। और वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि आपको किस बात की चिंता है, लगता है आप बहुत चिंतित हैं। तो उन्होंने अपनी चिंता बताई, तो उन्होंने दो प्रश्न किए, एक तो मेरा क्या मतलब मैंने कुछ किया क्या किया जो कि मुझे इतना सौभाग्य संपत्ति सुख प्राप्त हुआ है, और दूसरा वो तोता कौन है जिसने मुझसे ये बात कही और इसका अर्थ क्या है। तो वाल्मीकि मुनि ने जो है इनके पिछले जन्म की घटनाओं को जानने के लिए एक मुहूर्त तक ध्यान किया। एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट। 48 मिनट तक जो है उन्होंने ध्यान किया वाल्मीकि मुनि ने, इसके बाद फिर जो है इनके पिछले जन्म की घटना बताने लगे। कहा कि महाराज आप पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, बहुत सदाचारी और विद्वान थे, और आपकी पत्नी गौतमी नाम की थी, गौतम ऋषि की कन्या थी, बहुत पतिव्रता थी और वो भी बहुत समर्पित थी, आपकी सेवा में लगी रहती थी, आप बड़े प्रसन्न रहते थे और आप भी पूजा पाठ करते रहते थे, लेकिन एक दिन आपको जो है बड़ी चिंता हुई तो अपनी पत्नी से आपने कहा, अब आपने नहीं सुदेव ने कहा, मतलब समझ लो कि आपने, तो सुदेव ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी से बोले कि देवी मुझे जो है कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है, तो पुत्र के बिना तो जीवन बेकार है और मैं तो अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ, इस जीवन से कोई लाभ नहीं है पुत्र के बिना। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसी बात ना करिए, कभी कभी तो पुत्र से ही बहुत कष्ट मिलते हैं, उससे अच्छा है कि पुत्र ना हो। तो आप ऐसे भी सोचिए कि आपको कोई पुत्र नहीं है तो ये भी अच्छी बात है, ये भी भगवान की कृपा है। लेकिन फिर भी अगर आप पुत्र पाना चाहते हैं तो जैसे कर्दम मुनि और देवहूति ने भगवान को प्रसन्न किया था और भगवान की कृपा से उनको कपिल मुनि जैसे पुत्र प्राप्त हुए, तो आप भी जो है भगवान विष्णु की आराधना करिए तो वे आपको पुत्र देंगे। तो इनको जो है विचार पसंद आया और इन्होंने जो है बड़ी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या शुरू कर दी। क्या थी तपस्या इनकी? 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खा करके पानी पी देंगे। क्या समझे? 5 दिन में एक बार क्या खाते थे? सूखे पत्ते खाते और पानी पीते थे। और ये तपस्या उनकी 4000 साल तक चली। कितना? 4000 साल तक चली ये तपस्या। तो भगवान जो है गरुड़ जी के साथ आए, प्रसन्न हुए और बोले आप वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप सदाचारी पुत्र दीजिए। तो भगवान बोले कि देखो पुत्र का वरदान मत मांगो, मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखाएं पढ़ ली हैं, सब अक्षर पढ़ लिए हैं, 7 जन्मों तक तो तुम्हें पुत्र नहीं प्राप्त होगा, इसलिए पुत्र के अलावा तुम दुर्लभ से दुर्लभ जो भी वरदान चाहो मांग सकते हो, मैं दे सकता हूँ। तो ये फिर भगवान के सामने ही गिर गए, मूर्छित हो गए। और उनकी पत्नी समझाने लगी कि नाथ आप जो है अब आग्रह ना करिए पुत्र प्राप्त करने का, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो विष्णु क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, अपने भाग्य का ही सहारा लीजिए, भाग्य की आश्रित ही रहिए, है ना। तो गरुड़ जी को फिर बड़ा दुख हुआ कि यहाँ तो भगवान की एक प्रकार से अब तो निंदा का कारण बन गया कि भगवान जो है पुत्र नहीं दे सकते, किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। तो गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि आप प्रभु आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप तो जो है सब प्रकार की मुक्तियां दे सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, तो पुत्र देने में क्या परिश्रम है आपको, किसी के कर्मों को भी पूरा आप बदल सकते हैं, कर्मों को भी समाप्त कर सकते हैं, तो आपको पुत्र देने में क्या परिश्रम है। कोई व्यक्ति अगर हाथी का दान कर सकता है तो अंकुश देने में उसे क्या परिश्रम है ना। आप पुत्र के देने के लिए मना कर रहे हैं और आगे से फिर यही प्रथा चल जाएगी कि भगवान जो है किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, तो आपका फिर कोई भजन नहीं करेगा, फिर क्या भजन करेंगे। तो भगवान गरुड़ जी से हंसे और बोले गरुड़ जी मेरी आज्ञा से आप पुत्र दे दीजिए इनको। तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और गरुड़ जी ने कहा उनसे सुदेव ब्राह्मण से कि आपको जो भगवान ने जो कहा कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है वो सही है, लेकिन भगवान की आज्ञा है तो मैं आपको पुत्र दे रहा हूँ और आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, उससे आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। अब दुख क्या मिलेगा ये तो नहीं बताया स्पष्ट, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। तो ये बड़े प्रसन्न हो गए और समय आने पर उनकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का जन्म उत्सव मनाया और बहुत प्रसन्न हुए। बहुत से ऋषि मुनि आए दर्शन करने के लिए, सत्कार किया, दान किया, और ये पुत्र में जो है मतलब बहुत सौंदर्य था और बहुत गुण थे। अपने आचार्यों से जो है जो भी शिक्षा प्राप्त करता था तो तुरंत सीख लेता था, तो सब आचार्य भी संतुष्ट थे। अपने सहपाठी बालकों को भी बहुत प्रसन्न करता था, तो माता पिता को भी सुख देता था, अपने मित्रों को सुख देता था, आचार्यों को सुख देता था, और दिन ब दिन इसके गुण बढ़ते जा रहे थे। एक दिन देवल मुनि इनके आश्रम में आए तो देवल मुनि को जो है सुदेव ब्राह्मण ने सत्कार किया, आसन दिया, और ये जो बालक था इसका नाम था सुखदेव। तो ये बालक जो है देवल मुनि के चरणों में प्रणाम करता है। तो देवल मुनि देखते हैं कि बहुत ही इसके जो आचरण है इसका बहुत अच्छा आचरण है, अच्छा स्वभाव है। तो देवल मुनि बोले सुदेव से कि आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर उस पुत्र के जो है शरीर के हाथ के पैर के चिन्ह देखे और कहा कि सभी चिन्ह जो है ये बहुत ही शुभ हैं, इसमें जो है बहुत गुण है और बहुत शुभ चिन्ह है इसके शरीर में। फिर देवल मुनि बोले लेकिन आयु की भी तो परीक्षा करना चाहिए, अगर आयु ना हो तो सब गुण बेकार हैं, अगर आयु ना हो बालक की तो सब गुण बेकार हैं, तो आयु की जब परीक्षा करी तो देवल मुनि बोले कि इसका तो जो है 12 साल में जल में डूब करके मरने का विधान है, 12 साल में जल में डूब करके मर जाएगा। तो उसी समय जो है देवल मुनि को कह करके ब्रह्मलोक चले गए और सुदेव शर्मा उस समय पछाड़ खा करके गिर गए, बेहोश हो गए कि ये दुर्भाग्य भी मुझे मिला। तो उनकी पत्नी ने फिर समझाया इनको कि आप जो है भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, तो जिसके जैसे भाग्य में लिखा है वैसा होना है, जो होना है वैसा ही होगा, जो नहीं होना वो नहीं होगा। तो ऐसे कितने लोगों को नहीं मरना था तो उनको मरना पड़ा। तो सब जो है अगर भाग्य के अनुसार है तो आप जो है अब सुख दुख में समान होकर के आप भगवान का भजन करिए। तो सुदेव शर्मा ने किसी प्रकार से अपना शोक दूर कर दिया और बहुत समय इसी प्रकार से बीत गया। डेली वो वन में जाते थे समिधा और फूल लेने के लिए और घर में पूजा पाठ करते थे और बालक जो है पढ़ाई में जो है गुरु के पास जाता था और बच्चों के साथ भी खेलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गर्मी के दिन थे तो बालक जो है जल में जो है खेल रहा है बच्चों के साथ, बावली में जो है पानी था तो पानी में खेल रहा था और बहुत सुख मिल रहा था। गर्मी के दिनों में पानी बहुत सुख देता है। तो अपने जल यंत्र से जो है वो पानी की छींटे मार रहा था अपने मित्रों को और मित्र लोग मिलकर के उसको पानी मार रहे थे। तो घबरा करके और अपने मित्रों को धोखा देने के लिए उसने अपनी नाक बंद की और गहरे पानी में चला गया, अपने मित्रों को चिंता में डालने के लिए गहरे पानी में चला गया। लेकिन जब गहरे पानी में चला गया तो उसका दम घुटने लगा, तो उसने सोचा कि अब मैं पानी से बाहर निकलूँ, लेकिन नहीं निकल पाया, उसका शरीर छूट गया। अब जब शरीर छूट गया और मित्रों ने देखा कि वो पानी से बाहर नहीं निकल रहा है तो बड़ी चिंता में वो जो है आए और गौतमी जो माता जी थी उनको बताया कि वो तो जो है डूब गया पानी में। तो वो जो है माता जो है चिंतित हो गई, पछाड़ खा के गिर गई। तब तक ये सुदेव ब्राह्मण आए तो उनको पता चला, तो वो बावली में से उसका शरीर निकाला तो मरा हुआ शरीर उसका मिला। अब मरे हुए बालक को लेकर के गोद में और दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बावली के ही तट पर बैठे शोक करने लगे। अब उन्होंने शोक करना शुरू कर दिया और उसी समय मेघों की घटा छा गई और तेजी से वर्षा होने लगी। गर्मी के दिनों में भी वो ठंडी हवा चलने लगी, बड़ी शीतल तीखी हवा चलने लगी और ठंडा पानी और ठंडी हवा कोई सहन नहीं कर सकता, इतना ठंड हो गया, इतनी ठंडी हो गई। लेकिन ये पुत्र शोक में इतने इनको जो है ताप था पुत्र के शोक का कि इनको उसकी ठंड का पता नहीं चला और शोक करते रहे पूरा एक महीना इन्होंने शोक किया। हरि बोल, सो रहे क्या? पूरा एक महीना ये शोक करते रहे, इन्होंने ना तो खाया ना पिया और ना सोए और वर्षा में जो है ये बैठे, उसी वर्षा में जो है पानी के नीचे बैठे रहे। तो एक महीने जैसे पूरा हुआ तो वो सौभाग्य से कहता पुरुषोत्तम, अधिक मास था जिसका इनको भी पता नहीं था, अनजाने में ही आराधना हो गई और भगवान आए गरुड़ जी के साथ में और बोले आपका तो अब सौभाग्य, असीमित सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया है। अब तो आपका जो 12 वर्ष का जो बालक था अब इसको 12,000 साल की आयु में देता हूँ। अब और अब जो है आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा जीवन काल में, इस जीवन काल में आप मेरे धाम में आएंगे और अगले जन्म में फिर राजा दृढ़ धर्मा के रूप में आपको बहुत असीमित संपत्ति और राज्य और जो है सेना सब कुछ प्राप्त होगी। और आगे चल करके फिर जब आप चिंतित होंगे तो वाल्मीकि मुनि आपको फिर ज्ञान प्रदान करेंगे। तो वाल्मीकि मुनि ही बता रहे हैं राजा को कि मतलब भगवान ने तुमसे ऐसा कहा था तो तुम वही सुदेव ब्राह्मण हो और मैं तुमको जो बता रहा हूँ भगवान ने पहले से बता दिया था कि ऐसी चिंता में मैं तुमको ये सब बताऊँगा, ये सब घटना बताऊँगा। फिर वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि वो जो तोता था वो कौन है, वो 12,000 साल की आयु भोग करके वैकुंठ चला गया और वैकुंठ से ही उसने देखा कि आप अपने को भूले हुए हैं, राज्य में सुख में आप जो है अपने को भूले हैं। तो उस बच्चे ने सोचा कि मेरे पिता अगर इस भौतिक संसार में रहेंगे तो मेरे लिए भी बंधन होगा, तो आपको बंधन छुड़ाने के लिए वही तोते का रूप धारण करके आया था और फिर वैकुंठ चला गया। तो आपका ही पुत्र था वो जो कि आपको ये संकेत दे करके गया है ना। और उन्होंने फिर वाल्मीकि मुनि ने मतलब बताया कि अब आप जो है पुरुषोत्तम अधिक मास के प्रभाव से अनजाने में जो किया इसका इतना प्रभाव हुआ, तो अब आप जो है इसका विधि पूर्वक पालन करिए। तब ये जो है वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि इसकी विधि क्या है, तो वाल्मीकि मुनि बहुत विस्तार से इसकी विधि का वर्णन करते हैं। तो उसमें बहुत से नियम बताए गए हैं जो कलयुग में जिनका पालन नहीं किया जा सकता है, हम लोग तो केवल सुन सकते हैं। तो उनमें से कुछ बातें मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो पुरुषोत्तम अधिक मास के विषय में वाल्मीकि मुनि क्या बताते हैं, पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं, पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं, पुरुषोत्तम मास लगने पर उनकी पूजा करनी चाहिए, है ना। तो आप लोग पहले से ही पूजा करते हैं और विशेष करो, है ना, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, पुरुषोत्तम की ही पूजा करते हैं आप, है ना। जगन्नाथ भी जो है पुरुषोत्तम है, जगन्नाथ भी पुरुषोत्तम है, और चैतन्य महाप्रभु भी पुरुषोत्तम है, कृष्ण भी पुरुषोत्तम है, राम भी पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य, और जगन्नाथ प्रसाद पुरुषोत्तम, क्या कहेंगे, ये भी पुरुषोत्तम तो हैं, है ना। तो बहुत से पुरुषोत्तम हैं आपके पास में, आप विशेष इनकी जो है पूजा करिए। पुरुषोत्तम देवतम पुरुषोत्तम तस्य पूजा प्रकर्तव्या संप्राप्ते पुरुषोत्तमे। जो इस भवसागर में डूबते प्राणियों को उबारते हैं, कौन, पुरुषोत्तम, जो इस भवसागर में डूबते हुए प्राणियों को उबारते हैं, ये ध्रुव सत्य है, उनकी इस पृथ्वी तल पर कौन मरण धर्मा मनुष्य है जो पूजा नहीं करना चाहेगा, वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। मरण धर्मा कौन मरण धर्मा मनुष्य है जो पूजा नहीं करना चाहेगा। जो मनुष्य नहीं है वही पूजा नहीं करना चाहेगा, मनुष्य ही पूजा करना चाहेगा। संसार सागरे मग्नम उत्तारयति यो ध्रुवम को न सेवेत तम लोके मर्त्यो मरण धर्मवान। ग्राम फिर मिलते हैं, क्या ग्राम, समझे नहीं, गांव, अपना गांव, गांव फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। पुनर्ग्रामा पुनर्वित्तम पुनः पुत्रा पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः। इस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए, इस शरीर की रक्षा करना चाहिए धर्म प्राप्त करने के लिए, और धर्म की रक्षा करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए मोक्ष के लिए। तो इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। तद्रक्षितम तु धर्मार्थे धर्मो ज्ञानार्थ में भी ज्ञान सुलभो मोक्ष तस्मात् धर्मम समाचरे। देह रूपी वृक्ष का फल धर्म है, देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वो बांझ पेड़ है, पेड़ में फल ना हो तो बड़ी निंदा की बात है। हरि बोल, सो रहे, क्या सुना, कि मनुष्य का शरीर की तुलना किससे की गई, पेड़ से की गई, और धर्म की तुलना की गई फल से, और पेड़ में अगर फल ना हो तो मनुष्य शरीर में अगर धर्म ना हो, हाँ, तो जैसे पेड़ निंदनीय है अगर फल नहीं होता, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी निंदनीय है। जो शरीर धर्म से रहित है वो बांझ पेड़ है, के समान निष्फल है, बांझ पेड़ के समान निष्फल है। देहरूपस्य वृक्षस्य फलं धर्मा सनातनः धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो वन्दे वृक्षवान्। सहायता के लिए ना माता बताई गई है, क्या सहायता के लिए ना तो माता बताई गई, ना पत्नी बताई गई, ना पुत्र बताए गए हैं, ना पिता बताए गए हैं, ना अपने सगे भाई, ना धन बताया गया, केवल धर्म ही बताया गया। किसके लिए? सहायता के लिए। सहायता के लिए ना तो माता बताई गई है, ना पिता, ना भाई, कोई नहीं, केवल धर्म ही है। न माता ना सहा, न माता चा सहायार्थे, ना कलत्र सतोदय, न पिता सोदरा वित्तम, धर्मम तिष्ठति केवलम। वृद्धावस्था शेरनी के समान भय देने वाली है। वृद्धावस्था क्या है? शेरनी के समान भय देने वाली है, और व्याधियां शत्रु की भांति पीड़ा देने वाले हैं व्याधियां। और फूटे बर्तन से जिस तरह जल टपकता रहता है, उस तरह आयु प्रतिदिन छीण होती रहती है। आयु कैसे छीणती छीण हो रही है? फूटे बर्तन से पानी निकल रहा है, उसी प्रकार से आयु छीण हो रही है। जरा व्याघ्र भयदा व्याधे शत्रु यथा, आयुर्याति प्रतिदिनम भग्न भंडात पयो यथा। पानी की लहर की भांति लक्ष्मी चंचल होती है, क्या पानी की लहर की भांति लक्ष्मी चंचल होती है, और जवानी फूल के समान मुरझाने वाली होती है। जवानी कैसी है? फूल के समान मुरझाने वाली होती है। सारे सांसारिक सुख भोग जिस तरह स्वप्न में कोई राज्य का उपभोग करे, उसी प्रकार निरर्थक है। सांसारिक सुख क्या है? स्वप्न का राज्य। स्वप्न में आप राजा बन गए, हो गया, कुछ नहीं, सब बेकार। सांसारिक सुख क्या है? स्वप्न में जैसे राज्य प्राप्त हो जाए, ऐसे निरर्थक है सांसारिक सुख। तरंग तरला लक्ष्मीर, तरंग तरला लक्ष्मीर, यौवनम कुसुमोपमम, विषया स्वप्न विषया इव सर्वे निरर्थका। धन चंचल है, क्या अरे वो क्या है? धन क्या है? चंचल है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, सांसारिक सुख चंचल है, ऐसा समझकर सबसे उदासीन होकर मानव को चाहिए कि धर्म के साधन में तत्पर रहे। चलम वित्तम चलम चित्तम चलम संसार जम सुखम एवं ज्ञात्वा विरक्ता सन धर्माभ्यास परो भवे। सर्प के मुख में मेढक का आधा शरीर चला गया है, रिवोट क्या नींद आ रही है? सर्प के मुख में क्या हो गया है? मेढक का आधा शरीर चला गया है, फिर भी वो मक्खी खाने की अभिलाषा कर रहा करता रहता है। उसी प्रकार काल से डसे हुए जीव को भी दूसरे को पीड़ा देने और दूसरे का धन अपहरण करने की लालसा बनी रहती है कि मैं किसका धन और ले लूं, और काल उसको ग्रस रहा है। अभी पैर से उसने काल ने जो है खाना शुरू कर दिया है, और उसका जो है आधा शरीर चला गया काल में। मान लो 50 साल की आयु हो गई तो आधा चला गया, आधे ज्यादा चला गया, काल सर्प में उसका शरीर आधे ज्यादा चला गया, और वो दूसरे का धन हड़पने का जो है आनंद लेना चाहता है कि मैं दूसरे का धन हड़प लूँ, इधर से किसी को पीड़ा पहुँचाऊँ, इसको पीड़ा पहुँचाऊँ, है ना। काल से डसा हुआ जीव को भी दूसरे को पीड़ा देने और दूसरे का धन अपहरण करने की लालसा बनी रहती है। अर्धग्रस्तो हिनाभे को मक्षिका मत्तु भी मिच्छति, कालग्रस्त तथा जीवः पर पीड़ा धनाद्रितः। बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के चंगुल में गई हुई आयु वाले मनुष्य को क्या सुख मिल सकता है, तभी वो सुख की आशा करता है। मृत्यु के चंगुल में जीव फंसा हुआ है और सुख भोगने की आशा करता है। वध के लिए वध स्थल को पहुंचाए जाने वाले पशु की भांति सब सुख व्यर्थ है। वध के लिए उसको ले जाया जा रहा है, हैं? अब अपना घास खा करके सोच रहा है मैं सुखी हूं, ऐसा सुख है इस भौतिक जगत में। मृत्युग्रस्त आयुषा पुंसा किम सुखम हर्षयत्य होम आघातम नियमानस वध्य सेव निरर्थकम। जब धर्म करने की चित्त में इच्छा प्रबल होती है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब पास में धन आ जाता है तब उस समय बटोरने की लालसा में धर्म करने की प्रेरणा नहीं होती है। धर्मार्थम च यदा चित्तम न वित्तम सुलभम तदा यदा वित्तम न च तदा चित्तम धर्मान्मुखम भवेत्। धर्मान्मुखम भवेत्, जब चित्त में धर्म करने की भावना जग जाए और पास में धन भी हो जाए तो समय सत्पात्र नहीं मिलते हैं। क्या समझे, धर्म करना है और धन भी आ गया तो सत्पात्र नहीं मिलता जिसको मैं दूंगा, सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है ना, सब एक से एक नालायक, कोई सही व्यक्ति मिलता नहीं, इसको उनका कोई डिवोटी नहीं मिलता उस समय जिसको दान दिया जाए, इसको डिवोटी नहीं मिलता उस समय, है ना। धन भी है और धर्म करने की भी इच्छा है, सत्पात्र नहीं मिलता है। जब इन तीनों का समन्वय हो जाए, अब तीनों मिल जाए, क्या धर्म करने की इच्छा भी हो गई, धन भी आ गया, सत्पात्र भी मिल गया। चित्तम वित्तम यदा स्याताम सत्पात्र नात न भवेत एतंत्रतय संबंधो यदा काल हेतु संभवे। उस समय बिना विचार के ही जो धर्माचरण करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, तो विचार नहीं करना चाहिए उस समय, तुरंत दान कर दो। अगर विचार किया तो फिर क्या हो जाएगा, विचार बदल सकता है। हाँ कल बनेंगे मेंबर, कल बनेंगे, एक साल बाद बनेंगे मेंबर, पैसा है अभी अपने पास हाँ, लेकिन एक साल बाद बनेंगे, चला गया फिर मौका, है ना। उसमें बिना विचार किए जो धर्माचरण करते हैं वही बुद्धिमान कहे गए हैं। हजारों प्रकार के धर्म हैं जो वित्त की प्रचुरता से संपादित किए जा सकते हैं। अविचारे तदा धर्मम यह करो होते सब बुद्धिमान वित्त प्राचुर्य संसाध्य धर्मा संति सहस्र सहां। परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से ही बड़ा भारी धर्म होता है। क्या समझे, क्या पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से ही बड़ा भारी धर्म होता है, स्नान दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना। पुरुषोत्तम स्वल्प वित्त साध्यो धर्मो महान भवेन स्नानम दानम कथायाम चा विष्णु स्मरणम एव चा। यदि इतना भी धर्म किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाती है। एतन मात्रोपि सद्धर्म त्रायते महतो भयान। जिस प्रकार गंगा जी ही तीर्थ हैं, जिस प्रकार गंगा जी ही तीर्थ हैं और कामदेव ही धनुषधारी है, जिसको बाण चला दे गिर जाता है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, उसी प्रकार सब महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। हरि बोल। गंगा वितीर्थम स्मर एव, गंगा वितीर्थम स्मर एव धन्वी वित्तम तु विद्येव गुणास्तु रूपम मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षान मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। यद्यपि पुरुषोत्तम मास पहले सब धार्मिक कार्यों तथा यज्ञानुष्ठानों में बड़ा निंदनीय था, तो भी भगवान की कृपा से भूतल पर साक्षात भगवान के नाम से विख्यात हुआ है। यद्यपि सौ निंदे तमा पुरासीन सर्वे सुकृतेषु मखादिकेषु तथापि साक्षात भगवत प्रसादात तन्नाम नामना मुवि विस्तृतो भून। जिस तरह हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, क्या जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और समस्त कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाती हैं। हरि बोल। यथा हस्तिपदे लीनम सर्वं प्राणिपदं भवेत् धर्मा कला तथा सर्वे विलीना पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा जी के समान नहीं की जा सकती, क्या समझा? और नदियों की तुलना गंगा जी के समान नहीं की जा सकती, जिस प्रकार और पेड़ कल्प वृक्ष के समान नहीं हो सकते, क्या? और पेड़ कल्प वृक्ष के समान नहीं हो सकते। यथा मर तरंगिण्या न समा कल सकलापगा कल्प वृक्षेण न समा यथा सकल है पादपा। चिंतामणि के समान विश्व में दूसरा रत्न नहीं हो सकता, क्या? चिंतामणि के समान विश्व में कोई दूसरा रत्न नहीं हो सकता। कामधेनु के समान कोई दूसरी गाय नहीं हो सकती। राजा के समान दूसरा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। चिंता रत्ने रत्नानी न समान यथा भुवि कामधेनवा यथा गावो नराज्ञा पुरुषः समान। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं हो सकता। उसी प्रकार समस्त पवित्र महीने इस पुरुषोत्तम मास के बराबर नहीं हो सकते। न वेद सर्वशास्त्राणी पुण्य काला तथा खिला पुरुषोत्तम मासे न समो मासो न कर ही चेन। बहुत एक से एक बढ़कर के बातें हैं। इसमें क्या बताया गया? पुरुषोत्तम मास ऐसा ही श्रेष्ठ है जैसा क्या क्या बताया गया? जैसा गंगा जी नदियों में श्रेष्ठ है, कल्प वृक्ष वृक्षों में श्रेष्ठ है, कामधेनु गाय सब गायों में श्रेष्ठ, और राजा मनुष्य में श्रेष्ठ, चिंतामणि रत्नों में श्रेष्ठ, ऐसे पुरुषोत्तम मास सब महीनों में श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मासस्य देवतम पुरुषोत्तम तस्मात् संपूजयेत् भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमम्। शास्त्र के ज्ञाता कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित कर उनके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनं विप्राचार्य मथा हुए पूजां तेन प्रकल्पयेन। अंतःकरण में होने वाले काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर आदि बड़ी मछलियों से भरे हुए अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को जो व्यक्ति लांग करके पार जाना चाहे, उसे चाहिए कि इस भारतवर्ष में आदिदेव भगवान पुरुषोत्तम की भली भांति पूजा करे। छह प्रकार के ये जल जंतु हैं जो कष्ट पहुंचाते हैं भवसागर में। छह प्रकार के जंतु बहुत कष्ट भयानक जंतु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भवसागर के छह प्रकार के जंतु हैं। तो इन जंतुओं से भरे हुए इस समुद्र को जो पार करना चाहे तो वो क्या करे? आदिदेव भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करे। संसार सागर मति गभीर वेगम अंतस्थ मोह मदनाति तिमिंग लोकम उल्लंग गंतुम अभिवांछति भारतेस्मिन् संपूजये स पुरुषोत्तम आदिदेवम। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनवोपाख्याने आहने कथनम नाम विंशति तम अध्याय। 20वां अध्याय पूरा हुआ। 20वें अध्याय को मैंने 20 से शुरू किया था और 20वां अध्याय पूरा हुआ। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी, हैंड माइक है, चालू करो इसको, जल्दी जल्दी बोलिए।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे जैसे हम लोग पुरुषोत्तम मास का देखते हैं कि भगवान ने उसको अपना नाम दिया और उसके समान भगवान के समान बताया गया, तो ये वास्तविकता में देखा जाए तो ये भगवान का एक इनकारनेशन के समान ही होना चाहिए। भगवान ने खुद ही अवतार लिया हो और फिर वो सारी लीला हुई हो कि उनकी निंदा हो गई और सारा ऐसा खेल रचा गया, छोटा अभी नाम दे दिया और भगवान ने उसको अपने समान बता दिया।
नहीं मैं समझ नहीं, आपने प्रश्न, आपका प्रश्न है क्या? प्रश्न है
कि भगवान ये जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, ये भगवान से अलग आइडेंटिटी नहीं होगी, है ना?
भगवान से अलग नहीं, भगवान ने अपना इसको नाम दे दिया, आपने सद्गुण दे दिए और भगवान इसके स्वामी हैं, भगवान इसके देवता हैं, तो सुनो इसको जो है अपना स्वामी प्राप्त हो गया, भगवान स्वयं इसके स्वामी बन गए। सबने निंदा की थी, तुम्हारा कोई स्वामी ही नहीं, कोई सेवक का जो है फिर कुछ मतलब सम्मान नहीं होता है अगर उसको कोई स्वामी ना मिले, आप समझे? हाँ जी
धन्यवाद प्रभु जी। ये जो इसमें जो अधिक मास चल रहा है तो ये दो आषाढ़ चल रहा है, ये बनता कैसे है?
ये बनता इस तरह से है कि चंद्रमा के अनुसार भी जो है महीने होते हैं, ठीक है, और सूर्य के अनुसार भी महीने होते हैं, ठीक है। तो सूर्य का जो महीना है वो संक्रांति से संक्रांति चलता है, ठीक है, और चंद्रमा का जो महीना है वो पूर्णिमा और अमावस्या के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का जो महीना है वो सूर्य के महीने से हमेशा छोटा होता है, कुछ छोटा होता है। तो 35 महीने में जो है पूरा का पूरा महीना एक ये अलग निकल जाता है जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया, जिसमें संक्रांति के बीच में, दो संक्रांतियों के बीच में आता है, है ना। तो संक्रांति जो है हमेशा चंद्रमा के अनुसार जो महीने होते हैं तो हमेशा तिथियां बदलती रहती हैं संक्रांति की, लेकिन फिर एक ऐसा होता है कि दो संक्रांतियों के बीच में एक महीना पूरा का पूरा निकल आता है। तो 35 महीने में ये ऐसा होता है, तो इसको फिर जो है लोगों ने मलमास कहा, लेकिन फिर भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास बन गया, ठीक है। अच्छा आखिरी प्रश्न, अच्छा आप फिर आप, ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ऐसे वो ब्राह्मण थे, सुदेव ब्राह्मण थे, तो उन्होंने पुरुषोत्तम मास में ऐसे डायरेक्ट देखा, भक्ति तो नहीं कि वो कंदन ही कर रहे थे पूरे मास में, और तपस्या भी इंटेंशनल तपस्या नहीं थी, मतलब इंसिडेंटल तपस्या थी, मतलब बस तपस्या हो गई थी उनसे, मतलब कंदन ही कर रहे थे, तो उसमें इतना बड़ा उनको कैसे?
हाँ इनका अच्छा प्रश्न है, आप लोग समझे, इनका प्रश्न है कि पुरुषोत्तम मास का जो है उन्होंने हालांकि वो मतलब किया कि सोए भी नहीं, खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, है ना, तो उनको जो है कैसे फल मिल गया? ये भी जो है आभास है, इस नाम का आभास, अजामिल ने जो है नाम का आभास लिया था, भगवान का शुद्ध नाम नहीं था वो, नारायण जब बुलाया था तो अपने पुत्र को बुलाया था, तो नाम के आभास में कितनी शक्ति है? शुद्ध नाम तो फिर बहुत आगे की बात है, नाम के आभास में कितनी शक्ति है? उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास का जो है जो आराधना जो उन्होंने की है वो केवल आभास था, आभास में इतनी शक्ति है। और उस वो क्या था कि उनको पता नहीं था, उसी दिन से शुरू हुआ उनका नियम, ना खाना ना पीना और ना सोना, और अभ्र स्नान हुआ बादल का, वो सबसे अच्छा स्नान, दिन में 3 बार स्नान हुआ। तो ये सब जो है मतलब जो योग बन गया, तो ये जो है बड़े सौभाग्य से मतलब ऐसा बन गया, ठीक है ना। हाँ माता जी इनको माई दे दो, आखिरी प्रश्न है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी के पुत्र ना हो तो उसका कैसे उद्धार होगा?
किसी को पुत्र ना हो तो वही अपने भगवान को जो है अपना पुत्र मान सकते हैं, और भगवान जो है पुत्र बनने के लिए भी तैयार हैं, है ना। आप भगवान को कह सकते हैं आप मेरे पिता भी हैं, माता भी हैं, पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, पति भी हैं, भगवान को सब कुछ मान लो, ठीक है ना। तो भक्त जो है अनन्य भाव से अगर भगवान का चिंतन करते हैं तो फिर भगवान पुत्र का सुख भी देते हैं, अच्छा विग्रह के रूप में ऐसे बहुत मतलब ऐसे घटनाएं हैं कि भगवान अच्छा विग्रह के रूप में पुत्र की लीलाएँ करते हैं। जो भक्त हैं तो अपने अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, वो पुत्र की तरह जो है वो लीलाएँ करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में भी, तो भगवान जो है पुत्र भी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ही पुत्र नहीं बनाना चाहते भगवान को तो क्या किया जाए, भगवान तो आपके पिता भी बनने के लिए तैयार हैं, माता भी, पुत्र भी, सब कुछ तैयार है बनने के लिए। धन्यवाद। पुरंदराज श्री अच्छा ग्रंथराज नहीं है, पुरुषोत्तम अधिक मास महात्म्य महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधिका रमण की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, गौर नताई की जय, कृष्ण बलदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।